कि मेरी मंगेतर मुझे लेने एयरपोर्ट आए?
खुदा की कसम मसूद, मैंने बहुत कोशिश की कि सारे काम छोड़ के तुम्हें लेने एयरपोर्ट आऊं, लेकिन नहीं आ सकी।
ऐसा कैसा काम आ पड़ा कि नहीं आ सकी?
तुम सही हो मेरी जान, मैं माफ़ी चाहती हूँ।
लैली, तुम्हें ख्याल भी है कि इन 6 महीनों में तुमने कितनी मरतबा माफ़ी मांगी है?
मसूद मेरी जान, ईरान से दूरी ने तुम्हें बेजार कर दिया है।
मैं बेजार नहीं हूँ, तुम बदल गई हो।
जब लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं तो गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं।
लैली, जो बकवास तुम किताबों में लिखती हो मुझसे मत करो।
तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो, और इसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है।
ठीक है, तुम ही सही हो। मैं तुमसे उन काम के बारे में जो करने चाहिए थे और नहीं किए, या जो नहीं करने चाहिए थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।
तुमने वादा किया था कि 3 महीने में यूनिवर्सिटी का काम पूरा करके कनाडा आ जाओगे।
मैंने कहा तो मेरे लौटने पर साथ बैठकर तफसील से बात करेंगे।
अभी कहाँ हो? इतना भी नहीं बताना चाहती कि वो जरूरी काम जिसकी वजह से एयरपोर्ट नहीं आई वो क्या है?
मेरी जान, मुझे एक जरूरी काम आन पड़ा जिसकी वजह से मुझे नतांज जाना पड़ा। अभी रास्ते में ही हूँ।
तुम वहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे साथ कौन है?
अकेली हूँ मसूद जान, एकदम अकेली। तुम माँ के घर जाओ, मेरा काम पूरा होते ही मैं भी वहाँ आती हूँ। साथ बैठकर बात करेंगे, सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी।
लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती।
मैंने कहा ना कि बैठकर तफसील से सारी बातें करेंगे।
तुम तो सफर करने वालों में नहीं थी, ऐसा क्या हो गया कि इतने लंबे सफर पर निकल पड़ी?
जानते हो क्यों? नहीं बोलने की सिर्फ एक वजह है।
हाँ बोलो, सुन रहा हूँ।
मैं तुमसे कहने से डर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे डर है कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, यकीन नहीं करोगे।
तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चा हूँ?
तुम मेरी तफ्तीश कर रहे हो मसूद, तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूँ?
तुम मेरी बीवी हो और मुझे पूरा हक बनता है कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या कर रही हो।
ठीक से बात करो मसूद, मैं अभी तक कानूनी तौर पर तुम्हारी बीवी नहीं हूँ।
यानी पहले से तुम्हारे जहन में ये बात है कि हम कानूनी तौर पर मियां बीवी नहीं है।
तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो, बस भी करो।
लैली, मेरे एक सवाल का साफ साफ जवाब दो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी है? अगर खामोश रही तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है।
देखो, मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा है। मुझे अफसोस है कि मैंने इतने वक्त के बाद भी तुम्हें नहीं पहचाना।
मौजू बदलो नहीं, सही है कि इतने वक्त से ईरान में नहीं था, लेकिन ऐसी खबरें कानों तक जल्दी पहुंच जाती हैं।
मसूद, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
फारूक को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है।
मसूद, शर्म नहीं आती तुम्हें? फारूक सिर्फ मेरे साथ काम करता है, शर्म करो। तुमने अपने आप को ऐसी बात करने की इजाजत कैसे दे दी? तुम तो फारूक से मिले भी नहीं हो। तुम किस तरह दूसरों के बारे में इस तरह सोच सकते हो? कैसे ये फैसला कर सकते हो तुम?
यानी तुम उससे मिलती थी?
हाँ, मैं उससे मिलती थी मसूद, मिलती थी और तुमसे भी नहीं बताया। मैंने तुमसे झूठ कहा कि यूनिवर्सिटी का काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम एक शक की मिजाज के इंसान हो, समझे?
ठीक कहती हो, एक साथ काम करने वाला और हम फिक्र इंसान मुझ जैसे शक करने वाले शौहर से बेहतर है।
मसूद, अपना मुंह बंद रखो, मेरे तेहरान लौटते ही सब कुछ खत्म कर देंगे, समझे तुम? सब कुछ खत्म कर देंगे। ओह मेरे खुदा।
प्यारे अब्बास, हमारी तरफ से ये नजराना अकीदत कबूल हो।
हाँ
मुबारक हो,
मुबारक हो।
मैंने तो यहाँ से हटा दिया।
बहुत बहुत मुबारक हो।
बहुत शुक्रिया। कॉल करता हूँ। आप इसे जल्दी से यहाँ से हटा दो, वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी।
सच कहूँ तो मैंने फैसला कर लिया है, मैं कनाडा आऊंगी। मैं खुद अपने माँ बाप से बात कर लूंगी।
क्या बात है, सब मिलके इनके लिए ताली बजाएं। सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। ठीक हो? कब पहुंचे बेटा?
तकरीबन 2 घंटे हुए हैं।
एयरपोर्ट पर कोई तकलीफ तो नहीं हुई?
नहीं मामा।
लैली कहाँ है? ठीक तो है ना? उसे फोन दो जरा, मैं उससे बात करना चाहती हूँ।
मुझे पहुंचाकर वो कहीं काम से गई है।
काम पूरा करके जल्दी से वापस आ जाओ बेटा। जब से गए हो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि अगर लैली को यूनिवर्सिटी का काम पूरा करने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो पैसे देकर हल कर लेना। बेचारी 3 महीनों से फंसी हुई है।
ठीक है,
अपना ख्याल रखना। और कोई काम तो नहीं मसूद बेटे?
नहीं, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
मैं खुदा का वास्ता मसूद को फोन करो, वो आने वाला था, वो दोनों साथ ही होंगे।
पुलिस ने नहीं कहा कोई उसके साथ था।
तुम्हें खुदा का वास्ता मसूद को फोन करो।
ये लो माँ।
नहीं चाहिए।
अरे रजा, जाओ फोन करो, जाओ मसूद को फोन करो, जाओ।
हेलो।
सलाम वालेकुम मसूद भाई, खुशामदीद। लैली की कोई खबर है? एयरपोर्ट आई थी?
मैं भी यही सोच रहा था कि एयरपोर्ट पर मुलाकात होगी।
क्या हुआ, मुलाकात नहीं हुई?
उसने शायद तुम लोगों से भी झूठ बोला है।
मैंने सोचा शायद तुम्हें पता होगा। दरअसल पुलिस का फोन आया था कि लैली की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है।
तो तुम क्या बोल रहे हो, कब, कहां?
नतांस के हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी वार्ड से फोन आया था।
कोई इलाज शुरू किया है क्या?
हाँ किया है।
इसे कहाँ ले जा रहे हैं?
इसकी हालत बहुत खराब है, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है। अब दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वहाँ ऑपरेशन होगा, संभाल के भाई।
संभाल के, आराम से आराम से। बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए।
संभाल के ले जाओ, संभाल के। ए खुदाई, क्या हो गया मेरी बच्ची?
अंदर नहीं आओ, आप लोग बाहर रुकिए। माँ जी प्लीज, आप
प्लीज अंदर नहीं आए।
मेरी बच्ची को क्या हो गया?
माँ जी प्लीज,
क्या हो गया?
प्लीज
थी।
बेहतर होगा हम ये बातें बाद में करें। मेरे जहन में काफी सवालात हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे।
सलाम अलैकुम डॉक्टर, मैं मीटिंग में जा रही हूँ।
सलाम अलैकुम डॉक्टर।
वालेकुम सलाम।
वालेकुम
सलाम।
अब हमारे मरीज की हालत कैसी है?
आपका मरीज के साथ क्या रिश्ता है?
मैं उसका बाप हूँ।
बहुत खराब एक्सीडेंट था, बदकिस्मती से आपकी बेटी के दिमाग पर चोट लगी है और अभी वो कुमा में है। सब्र करना होगा।
सुनिए, माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा, कोमा से बाहर कब आएगी?
हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द अज जल्द उसकी हालत स्टेबल हो जाए। इंशाल्लाह सारी टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुँच पाएंगे।
आपका शुक्रिया।
वेलकम।
आप कहना चाहती है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि क्या होगा? आखिर दुनिया में कहां बीमार का इलाज इस तरीके से होता है?
आप इत्मीनान रखें कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने मरीज के चेकअप के लिए किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी नजर में फिलहाल बेहतर है आप दुआ करें।
हमने इतना पैसा हॉस्पिटल में इसलिए नहीं भरा कि आप कहें कि बैठकर दुआ करें। ऐसा लगता है कि यहाँ के डॉक्टर सारी चीजें सिर्फ लोगों के कंधों पर डालना चाहते हैं।
सलाम अलैकुम मसूद, कैसे हो भाई? ये कब हुआ?
मैं बस ईरान पहुंचा ही था।
हौसला मत हारो, मैंने कई लोगों को देखा है जिनकी हालत इससे ज्यादा खराब थी, लेकिन वो ठीक हो गए। तुम बताए बगैर क्यों आ गए? देखो मसूद, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ।
मैं बर्बाद हो गया आरिश। जब से तुमने मुझसे कहा कि तुमने कई मरतबा फारूक और लैली को साथ देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया। एक तरफ मैंने अपने आप से कहा कि मैं और लैली एक दूसरे से प्यार करते हैं, लैली मेरी वजह से अपने घर वालों के सामने खड़ी हो गई, और दूसरी तरफ 3 महीनों से हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाती रही, आ जाऊंगी कल आऊंगी, करते करते कनाडा नहीं आई तो नहीं आई। बस
मसूद भाई, यकीन करो, मैंने सिर्फ जो कुछ देखा तुमसे कहा, यकीन करो।
जब मैं उससे फोन पर बात कर रहा था, वो इस तरह से बात कर रही थी कि मुझे शक होने लगा, मैं गुस्सा हो गया और उसे बहुत भला बुरा कहा।
सब मेरी वजह से हुआ। गफूरी साहिबा, मेरी बात सुनिए, आप खुद बेहतर जानती हैं कि अगर हम ये किताब नहीं छापेंगे तो कोई दूसरा पब्लिशर ये रिस्क नहीं लेगा। इसमें जो एडिटिंग की जरूरत है मैं हल कर लूंगा, लेकिन वादा करता हूँ कि किताब के मतन में कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है? लेकिन कवर पेज बदलना होगा। जाहिर, समझ रही हैं क्या कह रहा हूँ?
हाँ, अच्छी तरह। ठीक है, बातिन के लिए जाहिर को कुर्बान कर सकते हैं। कहूंगी दोबारा डिजाइन कर दें,
अगर आप इजाजत दे तो मैं खुद करवा लूंगा, वादा करता हूँ पसंद आएगा।
जरूर आप अपने किसी ऐसे डिजाइनर के पास करवाएंगे जो एक आम इंसान और हर्मेन्यूटिक फलसफे के बीच के फर्क तक को नहीं जानता हो।
नहीं आप फिक्र ना करें, किसी ऐसे के हवाले करूंगा जो बिल्कुल आप ही की तरह जिद्दी है। उसके साथ काम करना मुश्किल है, लेकिन वादा करता हूँ कि उससे काम लेंगे तो उसका काम पसंद आएगा।
लेकिन पहले मैं उसका कोई सैंपल देखना चाहूंगी।
ओके मसूद भाई, सैंपल की सीडी तुम्हारे पास है?
किस लिए?
लैली गफूरी साहिबा एक नई और जुर्रतमंद राइटर हैं, इनका कलम बहुत ही बेहतरीन है। मसूद करमी साहब एक बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी के डिजाइनर हैं, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके लिए कुछ सैंपल्स बनाएं ताकि आप उनमें से सिलेक्ट कर सकें। ठीक है?
ठीक है, अलबत्ता ये जानते हैं कि मेरी तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती हैं।
लेकिन मसूद भी आपसे कोई कम नहीं है। ठीक है, आपस में बात करके तय कर लो, फिर मुझे बता देना। ओके खुदा हाफिज।
एक्सक्यूज मी, एक लड़की आपके सामने खड़ी हुई है। इत्तफाक से इस किताब की मौजूआत में से एक मौजू यही है।
सही है, माफ कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। मैंने अभी पुलिस से बात की, उन्होंने कहा गाड़ी के मालिक को एक्सीडेंट की जगह कार्रवाई पूरी करने के लिए जाना होगा। लैली का सामान मिल जाए तो मुझे फोन कर देना। खुदा हाफिज।
तुम्हारे साथ आऊं?
नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूं।
लैली साहिबा, एक मिनट रुकिए। सलाम अलैकुम, माफी चाहता हूँ दोबारा देर से पहुंचा।
जब भी किसी लड़की से मिलना हो तो ये आप हैं कि जिसे कम से कम 10 मिनट वक्त से पहले पहुंचना चाहिए, ना कि उस लड़की को।
जी सही है।
देखिए मैं जानती हूँ ऐसी चीजें स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंसान थोड़ी सी भी बसीरत रखता हो तो अपने आसपास के होशियार लोगों पर गौर करें, ऐसे लोग जो कि एक खास फिक्र रखते हो, जिनका अंदाज कुछ अलग हो, उनसे सीख सकता है। इतना याद रखना करमी साहब, कभी भी देर नहीं, ये बात कभी मत भूलना।
जी, सही है।
आपको याद होगा कि एक मर्तबा आपने मुझसे सवाल किया था कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की।
हाँ,
तो उसकी वजह यही
समझ
थी कि मर्दों के तौर तरीके
मुझे सब समझ में आ गया।
समझ में नहीं आते।
हाँ, मैं समझ गया।
कभी कभी ना
एक मिनट जरा आप रुकेंगी? माशाल्लाह, मैं कुछ दिन से जब कभी भी आपसे मिलता हूँ तो मुझे लगता है, देखिए मेरी नींद उड़ गई है।
हाँ तो
देखिए, ये सब बातें छोड़िए, मैं हमेशा से ही जिंदगी में एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो आपकी तरह जुर्रत के साथ मेरे सामने खड़े होकर मेरी गलतियों को बताए। वो मेरी जिंदगी के खोए हुए नज्म व ज़ब्त को मेरी जिंदगी में लौटा दे। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि आपने अभी तक जो कुछ भी कहा मेरे बारे में, उसमें से कई चीजों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये बात सभी लोग जानते हैं, मेरा यकीन कीजिए।
सच्ची आपकी बातों का यकीन कर लूँ?
हाँ क्यों नहीं, अगर आप मेरी बातों पर यकीन हासिल करना चाहती हैं और मुझे अच्छे से जानना चाहती हैं तो मुझसे शादी कर लें। लैली गफूरी, आप मुझसे शादी करेंगी?
सलाम अलैकुम, कितने खूबसूरत फूल हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे लिए ही है।
शुक्रिया। आरश को तुम्हारी किताब छापने की इजाज़त मिली या नहीं?
नहीं बाबा, ये तुम्हारे आरश के पास तो सिर्फ 2.5 मीटर लंबी जबान है।
तो फिर तुम इतनी खुश क्यों हो?
क्योंकि मैंने एक अच्छा पब्लिशर ढूंढ लिया है। अभी उसी के पास गई थी, उसने मुझसे वादा किया है कि एक हफ्ते के अंदर ही मेरी किताब छापने की इजाजत निकाल लेगा।
कौन है वो?
मुझे नहीं लगता कि तुम उसे पहचानते हो। एक आदमी है जिसका नाम फारूक करामती या ऐसे ही कुछ है।
तुम्हें उससे किसने मिलवाया?
उसने मेरी किताब पढ़ी थी, उसके पब्लिशर के जरिए मुझे ढूंढा, मुझसे कहा कि उसे मेरी किताब बहुत पसंद आई। और उसके अलावा ये है कि मेरी किताबें पढ़कर उसने ये अंदाजा लगाया है कि मुझे लिखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपका शुक्रिया। अमीन भाई, जरा इस गुलदान में पानी भर दीजिए, संभल के टूट ना जाए।
तुमने अपने पब्लिशर से कहा नहीं था कि तुम्हारा नाम और पता किसी को न दे?
क्योंकि फारूक करामती उसका करीबी दोस्त है।
अगर तुम किताब के मतन को तब्दील नहीं करोगी तो कोई भी उसे छापने की इजाजत नहीं निकाल पाएगा, सिवाय उसके जिसकी डिपार्टमेंट में ऊपर तक पहचान हो, और शायद ये करामती साहब उन्हीं में से एक हो।
कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ये जरूरी है कि मेरा काम हो जाए बस।
ये लीजिए।
शुक्रिया।
लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता।
तुम्हारे ऐसा सोचने से कुछ बदलेगा नहीं।
आज मुझे एक मोबाइल कंपनी की तरफ से उसके कुछ होर्डिंग डिजाइन करने की पेशकश मिली है, कल तक कुछ सैंपल्स डिजाइन करके देने हैं।
याद रखना, कल रात मेरे घर आना है।
अगर इस कंपनी का काम मुझे मिल जाए तो इस काम की बुनियाद पर कनाडा में काम ढूंढने के लिए मेरा रिज्यूमे थोड़ा वजनी हो जाएगा। जरा ये देखो।
तुम ये देखो। अच्छा है ना? तुम्हारे डार्क ब्लू सूट के साथ बहुत अच्छा लगेगा।
सूट के साथ?
हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि कल रात तुम मेरे घर सूट पहन कर आओ। पहनोगे ना?
तुम अपने घर वालों को धोखा देना चाहती हो लैली? क्या मतलब, कल मुझे सूट ही क्यों पहनना होगा? अब क्या दूसरे ये तय करेंगे कि मुझे क्या पहनना चाहिए?
नहीं मैं तो बस इतना चाहती थी कि हमारे कनाडा जाने से पहले कोई हमसे नाराज ना हो।
तुम अपने घर वालों के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो लैली?
मसूद, मुझे लगता है इतनी देर से कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे थक गए होगे। खाने के लिए बाहर चले चले? ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ।
तुम्हारे अंदर इतनी जरूरत भी नहीं है कि तुम अपने घर वालों के सामने सच्चाई पेश कर सको। तो मुझे ये बताओ कि तुम उनसे कैसे कहोगी कि तुम मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहती हो? बस एक मर्तबा इस मुल्क से बाहर निकल जाएं, फिर हम जैसे चाहें अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। वैसे भी कल रात मैं सूट ही पहनने वाला था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पसंद है। कैसा है?
अच्छा है, मेरा मतलब कि बहुत अच्छा है।
सलाम अलैकुम, पीने का पानी है? ये क्या है?
सलाम अलैकुम, रेशम के कीड़े, अब इसमें से दो तितली बन जाएंगे।
ये लीजिए।
शुक्रिया।
आपको और कुछ नहीं चाहिए?
नहीं, बस।
चाय तैयार है, आइए।
तुम्हें खुद कोई फैसला लेना होगा। तुमने अपनी जिंदगी की शुरुआत सही नहीं की है लैली। अगर शुरू से ही तुमने खुद को जैसी हो वैसी अपने माँ बाप के सामने पेश किया होता तो आज हम इस मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होते।
देखो, वो मेरे वालिद हैं। मैं नहीं चाहती कि उनको नाराज करूं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी उन्हीं की तरह बने, जो उन्हीं की तरह मजहबी हो।
क्योंकि वो तुम्हारे वालिद हैं, वो तय करेंगे कि तुम कैसे सोचो, किस तरह अपनी जिंदगी गुजारो। ये कोई मजाक है क्या?
तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं।
मैंने फैसला कर लिया है, हम उनके खिलाफ शिकायत करेंगे। कोर्ट भी हमारी शादी के हक में फैसला देगा। उससे पहले हम शरीयत के मुताबिक निकाह कर लेते हैं, अभी, आज ही। खुदा हाफिज।
खुदा हिफाजत करे।
माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं गाड़ी कब ले जा सकता हूं?
अभी बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम, हैजारी तुम्हारे पास क्रेन है? ठीक है, शुक्रिया। एक घंटा लगेगा। ये गाड़ी के फोटो।
अपना ध्यान बनाए रखना, तुमने फ्लैट चेक अच्छे से पास कर लिया है, अब तुम अपनी पहली अकेली परवास कर सकते हो। मौसम तो साफ है, तुम्हें कोई टेंशन, स्ट्रेस?
नहीं सर, मुझे अपनी पहली अकेली परवास करने का मौका देने का शुक्रिया।
तुम्हारी मेहनत थी, इंशाल्लाह कि तुम्हारी टेक ऑफ की तादाद और तुम्हारी लैंडिंग की तादाद बराबर हो।
जी सर, शुक्रिया।
गुड लक।
शुक्रिया।
गफूरी साहिबा, जब तक मेरे शागिर्द की लैंडिंग मुकम्मल नहीं हो जाती है तब तक मुझे रनवे पर ही रुकना होगा।
देर लगेगी, आप मेरे ऑफिस में जाकर बैठ सकती हैं, मैं वहाँ आता हूँ।
जी जी, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूँगी। आप अपना तारुफ कराएंगे?
मैं कैप्टन अमीरी हूँ और तकरीबन 7 सालों से इस बेस पर फ्लाइट ट्रेनर हूँ,
यानी जब से रिटायर हुआ हूँ।
अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी उन बुजुर्गवार से कैसे पहचान हुई और उनके साथ आपने जो वक्त बिताया।
बेशक, मैं और अब्बास टेक्सास के लावाक शहर के करीब रीस एयरबेस में एक साथ पढ़ते थे और हम लोग रूममेट भी थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए एक अमरीकी उसके कमरे में रहता था। ये एयरबेस का कानून था। ये इसलिए था कि जो स्टूडेंट्स अमरीकी नहीं थे उनकी अंग्रेजी सुधर जाए।
कैप्टन अमेरी।
बोलो।
माफी चाहता हूँ, इमरजेंसी है सर, एक जहाज में कुछ मुश्किल आ गई है।
ठीक है, अभी आ रहा हूँ। माफी चाहता हूँ, एक इमरजेंसी पेश आई है, मुझे कंट्रोल टावर जाना होगा। आज आपसे आगे बात नहीं कर पाऊंगा, फिर कभी करेंगे।
कोई बात नहीं, आप जाइए, ये भी अभी होना था।
मैं हमेशा सोचता था कि इश्क करना बेवकूफी का काम है। जब भी मुझे कोई कहता कि वो आशिक हो गया है और इश्क की बातें करता, तो मुझे उसकी बातें बकवास लगती थी। तुमसे मिलने से पहले मुझे इस किस्म की बातें समझ में नहीं आती थी लैली। मैं सोचता था कि तुम वही हो जिसके बारे में कहते हैं किस्मत में लिखी हुई थी, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। अगर जो बातें मैंने सुनी है सच हुई, तो तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरा दिल चाहता था कि जब मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलूं और फारूक के बारे में पूछूं, तो तुम मुझे एक थप्पड़ मारो और कहो कि वो सारी बातें बकवास थी। लेकिन तुम नहीं आई लैली। या तो जल्दी होश में आ जाओ, या किसी तरीके से मुझे साबित करो कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था।
आने दो, थोड़ा नीचे। हाँ, संभाल के आने दो, बस ठीक है। ये लो भाई, गाड़ी में पड़ा था, तुम इसे अपने पास रख लो।
बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
मेरा खानदान मजहबी और रिवायती है, और मेरी बेटी भी एक बा ईमान और मजहबी लड़की है। तुम दोनों में बहुत फर्क है।
आप बड़ी आसानी से मेरे खानदान के बारे में फैसला कर रहे हैं, जबकि आप अभी तक अपनी बेटी को भी ठीक से पहचान नहीं पाए।
मेरी बेटी ने सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, जो हमेशा अपनी पढ़ाई में मशगूल रही है, और उसे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे खानदान के साथ जो।
आपने मुझे यहां बुलाया था कि इस तरह की बातें सुनाए।
तुम्हें ये बातें सुनाकर कहना चाहता हूं कि तुम यहां से बाहर निकल जाओ।
मैंने लैली से वादा किया है कि आपको कुछ बातें नहीं बताऊंगा। अगर मैंने आपको वो बातें बताई होती, तो आपको अंदाजा हो जाता कि लैली का आपसे और आपके ख्यालात से कोई लेना देना नहीं। गफूरी साहब, क्योंकि मैं और लैली एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम शादी कर लें और इसके बाद ईरान से बाहर चले जाएं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम यहां रहेंगे तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। बस
लैली मेरी बेटी है, क्या उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं?
अफसोस कि मैंने उससे वादा किया है। अगर आप इस शादी की इजाजत दे दें और रस्मी तौर पर निकाह हो जाने दें, तो सारी चीजें बड़ी आसानी से निपट जाएंगी। मेरी नजर में ऐसा करना आपकी इज्जत और आबरू के लिहाज से बेहतर होगा। खुदा हाफिज।
आज सुबह मैंने मसूद के साथ फोन पर बात की। उसने दोबारा पूछा कि यूनिवर्सिटी का काम पूरा करके उसके पास कब जाऊंगी। मैंने फिर से उसे कोई साफ जवाब नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि इस बारे में उसे कैसे बताऊं। दिन ब दिन हमारे दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। हाजी इस्माइल बाबाई की हमेशा तमन्ना थी कि अब्बास डॉक्टर बने, और तरजीहन एक फार्मासिस्ट, शायद इसीलिए क्योंकि वो खुद एक क्लिनिक में काम करते थे। पहली मर्तबा जब मैं फारूक से मिली, तो उसे मेरी एक किताब छापने के लिए देना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसा आदमी है जो बड़ी आसानी से हर किस्म की किताब छापने की इजाज़त निकाल सकता है और जो चाहे छाप सकता है। मैं चाहती थी कि मेरी किताब छप जाए, वो भी बगैर किसी सेंसर के। फारूक ने भी कबूल किया कि वो काम कर देगा, कैसे करे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आज मुझे फारूक से मिले हुए कई महीने बीत चुके हैं। आज सुबह अपनी किताब पढ़ रही थी जिसमें फारूक ने एडिटिंग की थी। किताब के मतालिब काफी बदल गए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। शायद ये सब फारूक की वजह से है। फारूक ने मुझे जो चीजें सिखाई हैं उसकी वजह से है। मुझे इश्क हो गया है, अब ईरान छोड़कर नहीं जाना चाहती।
मुझे इश्क हो गया है, अब ईरान छोड़कर नहीं जाना चाहती। मुझे इश्क हो गया है, अब ईरान छोड़कर नहीं जाना चाहती। लैली, हेलो।
हेलो, सलाम अलैकुम, मसूद बोल रहा
हूँ। वालेकुम सलाम, माफ करना, लैली का नंबर लिखा हुआ था। उसका सिम कार्ड अपने फोन में लगा दिया है। अली रजा, तुम नहीं जानते उस दिन लैली कहाँ जा रही थी?
मैं कभी भी लैली के काम में दखल नहीं देता था।
ऐसा काम करने पर मजबूर मत करो जिससे गफूरी खानदान का नाम खराब हो जाए। मेरे सवाल का जवाब दो।
क्या मतलब, धमकी दे रहे हो?
तुम इसे जो समझना चाहते हो समझ सकते हो, मेरे सवाल का जवाब दो।
तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है?
सुनो, जब तेहरान आऊं तो तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूं, तुम्हारे माँ बाप के लिए भी बेहतर होगा।
हाँ, यही बेहतर होगा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। अगर तुम्हें लैली से थोड़ी भी मोहब्बत होती तो तुम ऐसी बकवास नहीं करते।
चाय है?
हाँ बैठिए, लाता हूं।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
देखा आपने, कल रात एक और कुएं में चला गया।
कितने खूबसूरत हैं, कहाँ से लाई हो?
एक ड्राइवर ने दिया, अगर पसंद है तो ले लीजिए।
एक कितने का है?
पैसे नहीं, जितने भी चाहे ले लीजिए, बेरी के पत्ते खाते हैं।
तुम्हारा शुक्रिया। कहाँ रखूं? अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं कुछ ले लेता हूँ।
आ, आ,
कैसे हो इंजीनियर साहब?
हाँ,
जल्दी लौट आए?
काम जल्दी पूरा हो गया।
सलामत रहो।
तुम्हारा नाम क्या है?
फरिश्ते।
फरिश्ता साहिबा, फरिश्ता साहिबा, तुम्हारा शुक्रिया।
शुक्रिया कैसा?
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
ये लीजिए।
इसकी क्या जरूरत है?
अरे नहीं, शुक्रिया। छट्टे वापस मत देना, कल एक पानी की बोतल ली थी, पैसे देना भूल गया था, माफ करना।
खुदा को नहीं भूलना।
मैं चलता हूँ।
खुदा हाफिज।
मिल गया। मैंने कहा था ना, वीजा मिल जाएगा।
बहुत अच्छे।
उन्होंने कहा कि पापा का वीजा भी तैयार है। कोई यकीन नहीं करेगा कि हमें इतनी आसानी से वीजा मिल गया।
कितना अच्छा हुआ ना, मुझे यकीन नहीं होता कि इतने आराम से सब काम हो गया।
खुदा करे कि तुम्हें रेजिडेंस परमिट भी इतनी ही आसानी से मिल जाए।
पापा ने कनाडा के अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट किए हैं कि एक दो महीने में ही रेसिडेंस परमिट मिल जाएगी। अब तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों?
कुछ नहीं।
अपने वीजा के लिए परेशान हो? जैसे ही शादी हो जाएगी हम तुम्हारा वीजा भी ले लेंगे।
तुमने मेरे बाबा से क्या कहा मसूद?
मैंने क्या कहा?
तुमने कहा कि मैं ऐसी नहीं हूं जैसा वो समझते हैं। तुम उनके पास क्यों गए थे?
उन्होंने ही कहा था कि मुझसे मिलना चाहते हैं।
लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था।
जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, जब कहा कि हम दोनों में बहुत फर्क है, तो बताओ मुझे क्या जवाब देना चाहिए था? तुमने उन्हें क्या जवाब दिया?
मैंने सब बता दिया उन्हें, वो सारी बातें जो उन्हें बताने की अब तक जुर्रत नहीं की थी।
सच्ची?
हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं उनकी बेटी नहीं हूँ।
तो अब हम क्या करेंगे?
अब मैं ऐसा समझती हूँ कि हर चीज की कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। कुछ वक्त उनकी बेटी नहीं रहूंगी। ये वीजा की मिठाई, ये लीजिए।
खुशकिस्मती से उसके होश की सतह गहरी नहीं है।
खुशकिस्मती से?
मेरा मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये एक मेडिकल इस्तेलाह है। मामूलन ऐसे मरीज के जिनके होश की सतह गहरी होती है, उनकी हालत स्टेबल होने में कुछ वक्त लग जाता है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आपके मरीज के केस में 24 घंटों से ज्यादा नहीं लगा।
मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यानी अब कब पता चलेगा कि कब होश में आएगी?
आप बैठते क्यों नहीं? बदकिस्मती से हम इस हालत में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। करमी साहब, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब कोई मरीज कोमा में चला जाता है, उसकी हालत ऐसी होती है कि जब तक उसके होश की सतह नॉर्मल तक नहीं पहुंच जाती है, हमें सिर्फ सब्र करना चाहिए।
अगर मुल्क से बाहर ले जाऊं, वहां उसके लिए कुछ हो सकता है?
आपके मरीज की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं कि वो एक लंबा सफर बर्दाश्त कर सके। अगर आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर दोबारा गुस्सा नहीं हो जाए, तो मैं आपसे कहूंगी उसके लिए दुआ करें। आप दुआ करें, हम हमारा काम अंजाम देंगे। आप बहुत नाउम्मीद ना रहें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में उसके होश की सतह बेहतर हो जाएगी, तब हम किसी तरीके से उसके साथ राबता कायम कर सकेंगे। खुदा पर भरोसा रखें।
मैं उसे देख सकता हूं?
हाँ, क्यों नहीं, लेकिन फिलहाल सिर्फ आईसीयू के बाहर के शीशे से।
दलील की बुनियाद पर इतने सारे पब्लिशर्स के होते हुए तुम इस फारूक
करामती
के साथ काम करना चाहती हो?
मेरी दलील बहुत ही सादा है, क्योंकि वो एक ही ऐसा बंदा है जो मेरी किताब बगैर किसी सेंसर के छाप सके।
उसके बदले में क्या चाहता है?
एक रजिस्टर्ड मौजू पर तहकीक।
मुझे लगता था कि तुम्हारा काम और कलम तुम्हारे लिए बहुत अहम है, कभी किसी कीमत पर नहीं बेचोगी।
अहमियत अभी भी है, लेकिन कभी इंसान को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है ताकि अपने मकसद तक पहुंच सके।
तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लैली। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर कनाडा के पब्लिशर्स को इस बारे में पता चल गया तो कितना बुरा होगा? वो लोग हमारे बारे में सब जानते हैं।
मैंने इसके बारे में भी सोचा है। मैंने इन फारूक करामती साहब से कहा था कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा नाम इस रजिस्टर्ड किताब पर रहे, लेकिन सच पूछो तो जो पैसा मुझे देंगे बहुत ज्यादा है।
देखो, अगर बात पैसे की है तो हमारे पास बहुत पैसे हैं।
बात पैसे की नहीं है, मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मेरी किताब छप जाए।
लेकिन उसने तुमसे ही ये काम करने के लिए क्यों कहा?
क्योंकि उसे मेरे लिखने का अंदाज पसंद है, यानी उन्हें मेरा अंदाज अच्छा लगता है। उसके अलावा ये रजिस्टर्ड किताब किसी ऐसे इंसान के बारे में है जिनकी ये बहुत ज्यादा मकरूज है।
तुम चाहे कुछ भी कहो, ये आदमी मौके का बहुत अच्छा फायदा उठा रहा है।
अब इतने बदबीन भी मत बनो जनाब।
क्यों बदबीन ना बनूं? यही तो हकीकत है। अगर कल इस आदमी की वजह से तुम्हें वीजा मिलने में मुश्किल पेश आएगी, तब भी मुझसे कहोगी कि बदबीन ना बनूं?
लेकिन मसूद, मैं एक साल से अपनी किताब छपवाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये फितरी बात है कि मैं अपनी किताब छपवाने के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाश करूँ।
तुम दोनों एक दूसरे से सिर्फ 3 महीने दूर रहने वाले हो, इसमें इतना उदास क्यों हो रहे हो?
आप भी है ना।
हमारी फ्लाइट का ऐलान हो रहा है, हमें जाना चाहिए।
लैली बेटी।
जी माँ।
अपना ख्याल रखना।
जी जी शुक्रिया।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
लैली जान।
हाँ बोलो ना।
अपना काम पूरा करके जल्दी आना।
जरूर,
तुम्हारा इंतजार करेंगे।
ठीक है,
ख्याल रखना अपना।
तुम भी ख्याल रखना।
खुदा हाफिज।
तुम्हारी कमी महसूस होगी।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
तो अब खुदा हाफिज लैली।
खुदा हिफाजत करे, अपना ख्याल रखना।
तुम भी ख्याल रखना। खुदा हाफिज। तुम चलो, मैं आता हूं। मैं नहीं चाहता तुम सोचो मैं तुम्हारी तरक्की में रुकावट बन रहा हूं। लैली, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना।
मुझसे नाराज हो?
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। डॉक्टर से मिले?
कहा उसकी हालत बेहतर है।
कुछ बताया होश में कब आएगी?
उन्हें खुद नहीं पता, हमें सब्र करना होगा। बेहतर है आप घर चली जाएं, यहां बैठने का कोई फायदा नहीं।
नहीं, मुझे उसे देखना है।
तुमसे बात करनी है रजा।
अभी मौका नहीं है, नहीं देखते?
यही मौका मुनासिब है।
रजा बेटा, मैं अपनी दवा लाना भूल गई हूं।
मैं अभी नीचे जाकर ले आता हूं।
मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जिस वक्त मैं ईरान में नहीं था, लैली के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में मुझे खबर नहीं है।
मैं कभी भी लैली के मामले में दखल नहीं देता था। उसने तुम्हारी वजह से हम सबको छोड़ दिया। मेरे ख्याल से बेहतर होगा तुम मेरे माँ बाप से बात करो।
मैंने तुम्हारे साथ बात करना बेहतर समझा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे हालात में उनके सिर पर और परेशानी डालूं। कल जब लैली का एक्सीडेंट हुआ, वो कहां जा रही थी?
देखिए मसूद भाई, दो मर्तबा जब लैली ने अपने आर्टिकल्स दूसरों के नाम से छापे, या जब वो बाबा से झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई, या जब घर वापस आई, मैंने कभी उसकी बातों को अहमियत नहीं दी। उसका दिमाग आसमान पर था, हम सब नाराज थे।
रजा, तुम्हारे बचकाने झगड़े से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लैली 3 महीने पहले हमारे पास कनाडा आने वाली थी, लेकिन वो आज तक नहीं आने का कोई ना कोई बहाना बनाती रही। क्यों?
मुझे लगता था लैली इन बातों से ज्यादा अहम है। वो वहाँ ऊपर आईसीयू में है और तुम क्या सोच रहे हो?
वो बातें जो उसके बारे में सुनी है, क्या मुझे जानने का हक नहीं कि 6 महीने बाद जब ईरान वापस आया तो मेरी मंगेतर मुझे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आई?
अगर तुम्हारी ये परेशानी है तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं।
ये मेरी परेशानियों में से एक है।
मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस मुद्दत में वो एक किताब पर काम कर रही थी, 3-4 शहरों में गई थी, इस्फहान, कज़वीन और देज़फुल, बस इतना ही।
ठीक है, ठीक है। रजा, तुमसे एक सवाल करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक मर्द की तरह उसका सही सही जवाब दो। किसने लैली को कनाडा नहीं आने का मशवरा दिया? देखा तुमने, तुम भी शक में पड़ गए ना? ये देखो, मैंने जो कुछ भी देखा वो तुम्हें बताता हूं। मुझे इश्क हो गया है, अब ईरान छोड़कर नहीं जाना चाहती।
भाई साहब संभाल के, अगर तुम सिगरेट पीना ही चाहते हो तो मेहरबानी करके मेरी सिगरेट खराब मत करो, जाओ जाकर अपने लिए खरीद लाओ।
आरश,
हाँ,
आज रात ही अपने दोस्तों को फोन करके मुझे फारूक का पता निकाल कर दो।
मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी हालत में फारूक को ढूंढने से तुम्हें क्या फायदा होगा। अगर मेरी बात मानो तो थोड़ा सब्र करके देखो लैली का क्या होता है, ठीक है?
ये शक तो मुझे दीवाना बना देगा। एक तरफ जब लैली को हॉस्पिटल के बिस्तर पर इस हालत में देखता हूं तो उसके लिए दिल जलता है, और दूसरी तरफ जो भी चीजें हुई हैं, लगता है मेरे दिल में लैली की निस्बत नफरत पैदा हो गई है। मैं उसके बारे में कोई ना कोई फैसला करना चाहता हूं।
बाप रे बाप, खाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। देखो मसूद, मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने लैली पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। वही गलती जो मैंने सहर के साथ की थी। तुम खुद गवाह हो कि उसने मुझे कैसे धोखा दिया।
तुम्हारी और सहर की दास्तान मेरे और लैली के वाकये से बहुत अलग है।
हाँ बराबर, आप रोशन फिक्र लोगों की हर बात दूसरों से अलग होती है, लेकिन सिर्फ मामला खराब होने तक ही। क्या अगर फारूक मिल भी जाए तो उसके साथ क्या करोगे?
चाहता हूं पहले यकीन हासिल कर लूं, उसके बाद उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि।
तुम बहुत भोले हो, तुम कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकते हो। तुमने और लैली ने कानूनी तौर पर निकाह नहीं किया है, किया है?
तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? रजिस्टर नहीं करवाया था लेकिन हमने निकाह तो पढ़ा है। हमने आपस में कितनी बातें की है, वादे किए हैं। मेरी बीवी है।
मसूद जान, ऐसा लगता है तुम इस जमाने में नहीं जी रहे हो। ऐसे वादों का कोई मतलब नहीं। इंसान शुरू शुरू में एक दूसरे से ऐसे हजारों वादे तो करते हैं और बाद में उसे बड़े आसानी से भूल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कोई सबूत है? कोई कागजात है? हाँ, ठंडा हो गया, अपना खाना खाओ।
सलाम अलैकुम करमी साहब।
वालेकुम सलाम।
कैसे हैं आप?
ठीक हूँ, शुक्रिया। सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बोलिए।
माफ कीजिए, करामती साहब की कोई खबर है?
करामती साहब कौन है?
वही आपके ऊपर के दफ्तर वाले।
काफी दिनों से उन्हें देखा नहीं।
उनका कोई पता या फोन नंबर?
उनकी किसी से बातचीत नहीं है।
ठीक है, शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
हाँ हेलो आरिश,
ढूंढ लिया उसे?
अरे नहीं बाबा, उसका दफ्तर बंद था, कुछ दिनों से दफ्तर नहीं आया है। उसका कोई दूसरा एड्रेस नहीं है?
नहीं।
ठीक है, मैं दफ्तर हिदायत जा रहा हूँ। वहाँ कोई पहचान है?
तुम अभी गुस्से में हो मसूद, फिर कभी जाना।
ठीक है, अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं।
मसूद भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। अगर कुछ नहीं मिल पाया तो कोई और कदम उठाएंगे, ठीक है? अभी ऑफिस बंद होने का वक्त हो चुका है, सब कुछ बंद होगा।
ठीक है, रहनुमाई करने का शुक्रिया। कुरान और तौरात दोनों इस मौजू के बारे में कहते हैं कि इब्राहिम काफी बड़ी उम्र तक पहुंचने के बाद साहिब औलाद हुए। उन पर खुदा की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दें, और ये एक बहुत बड़ा और सख्त इम्तिहान था जिससे दोनों बाप बेटे को कामयाबी के साथ गुजरना था।
लेकिन क्योंकि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का पूरा वजूद खुदा की तौहीद के आगे तस्लीम था, इस सख्त इम्तिहान से कामयाबी के साथ गुजर गए और खुदावंदे ताला की बारगाह में तस्लीम का सबसे आला मकाम हासिल कर लिया। कुरान और तौरात इस मौजू पर भी मुत्तफिक है कि खुदा का ये हुक्म सिर्फ उनके इम्तिहान के लिए ही था, और हकीकत में बेटे की कुर्बानी वाकई हुई ही नहीं थी। लेकिन कुरान और तौरात में इस बात पर इख्तिलाफ है कि ये कुर्बानी का हुक्म किस बेटे के लिए नाजिल हुआ था, क्योंकि कुरान में पेश हुआ है कि ये हुक्म इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए था, तौरात में पेश हुआ है कि ये हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए था। इब्राहिम ने कई मर्तबा इम्तिहान दिए थे, इस बार भी उन्हें एक बहुत बड़ा इम्तिहान देना था जिसमें खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उन्हें अपने बेटे को कुर्बान करना था। उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो अपने हाथों से अपने जवान बेटे इस्माइल का गला काटें।
टेप नंबर 3, कज़विन। तुम ये सब क्या कर रही थी लैली?
ये शहीद बाबाई के वालिद का शहर है, उनका स्कूल, उनका मोहल्ला, गली, और ये है शहीद अब्बास बाबाई के वालिद का घर। मैं शहीद अब्बास बाबाई की माँ से मिलने आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है, क्योंकि इस घर में शहीद बाबाई का म्यूज़ियम भी है। हम घर के अंदर हैं और जिन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं वो शहीद बाबाई की माँ है और घर के अंदर हम सलाम वालेकुम। सलाम माँ जी, माफ़ी चाहती हूँ आपको परेशान किया। मैं लैली गफूरी हूँ और आपके बेटे शहीद बाबाई की ज़िंदगी पर तहकीक कर रही हूँ। मेरी दरख्वास्त है आप हमें उनके बारे में कुछ बताएं, उनकी कोई दास्तान बताएं।
शहर की दरो दीवार उसकी यादों से भरी है। यहाँ घर के अंदर इसकी तस्वीर ले लो, यादगारों से भरा हुआ है। वहां पर एक कमरा है, जाओ वहां की तस्वीर ले लो, अब्बास की चीजों से भरा हुआ है।
खान यूनिस साहब, मुझे बताया गया है कि आप शहीद बाबाई के खानदान के पुराने दोस्तों में से हैं, क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं?
मैं उनके लिए ताजिए का सामान लाया करता था, कुछ चीजें खुद बनाता भी था।
आपकी उम्र कितनी है?
तकरीबन 80, लगता नहीं हूँ ना।
नहीं, इंशाल्लाह खुदा आपको लंबी उम्र दे। अगर याद हो तो क्या आप हमें शहीद बाबाई के बचपन या उनकी जवानी की कोई बातें बता सकते हैं?
क्या बताऊं, हर साल ईद कुर्बान के मौके पर मेरे लिए कुर्बानी का गोश्त लाया करता था। मैं भी जरूरतमंदों को दे देता था, क्योंकि मेरे और मेरे बीवी बच्चों को शिकार का गोश्त खाने की आदत थी। अब्बास को पता चला, जब पता चला मेरे सामने खड़े होकर कहा, खान यूनिस, तुम्हें हिरन, जंगली भेड़ वगैरह जैसे जानवर मारने में क्या मजा आता है? उनके भी बच्चे हैं, मां हैं। कहा कि उसने एक मर्तबा चाय की दुकान में टीवी पर देखा था कि एक भेड़ जिसके बछड़े को शेर ने शिकार किया था उसके लिए रो रहा था। मुझे अब्बास से और अपने आप से शर्म आई और मैंने बंदूक बेच दी। उसके बाद कभी शिकार नहीं किया।
हेलो, बोलिए।
सलाम अलैकुम, माफ कीजिए, मैंने लैली गफूरी के मोबाइल पर फोन लगाया था।
वो अभी नहीं है। आप?
माफी चाहती हूँ, आप?
मैं उनका मंगेतर हूँ।
सलाम करमी साहब, माफी चाहती हूँ, अपना तारुफ नहीं करवाया, मैं हिकमत हूँ।
बदकिस्मती से लैली का एक्सीडेंट हुआ और वो अभी हॉस्पिटल में है।
एक्सीडेंट? कब?
परसों।
अभी उसकी हालत कैसी है?
हालत बहुत ही खराब है। सलाम अलैकुम।
आओ मसूद।
अमीर भाई।
खुशामदीद।
सलाम मसूद।
स्कोर क्या है?
40-0।
तुम इसे नहीं हरा सकते। मुझे यहां किस लिए बुलाया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा डॉक्टर ढूंढा।
बकवास मत करो यार, यहाँ बुलाया ताकि थोड़ा मूड चेंज हो जाए। वैसे तुम्हें खबर देना चाहता हूँ।
क्या है, जल्दी बताओ, मुझे बहुत काम है। दफ्तर हिदायत गया था लेकिन कोई फायदा नहीं।
मैंने कहा था ना नहीं जाना। अमीर भाई थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं, आओ बैठते हैं। मोहम्मद दो लाना।
बोलो।
उसका पता लग गया है, तुर्की गया है।
तुर्की किस लिए गया है?
अभी एक आदमी मिला है जो पहले फारूक के लिए काम करता था। उसने कहा कि 2 साल पहले जब उसका पब्लिकेशन का कारोबार ठप पड़ गया तो वो अपने शहर इस्फहान लौट गया। वहां जाकर 6 महीने हुए थे कि लैली को काम की पेशकश की।
हाँ
तो क्या
एक इंसान की तरह बाकी की बात बताओ।
आहा, यानी तुम्हारी तरह। ठीक है, एक चीज और, वो तेहरान आता है ऐसे किसी की तलाश में जो उसकी मदद करे। एक मिलिट्री का कमांडर, कोई 37 साल का पायलट, नाम बाबाई, जो एयरफोर्स का एक कमांडर था, उसके बारे में तहकीक करके किताब छापे और उसके पैसे ले।
तो इसका फारूक का तुर्की जाने से क्या ताल्लुक है?
अभी बताता हूं। शुक्रिया मोहम्मद। इसी पायलट बाबाई का एक क्लासमेट इनकलाब के बाद बोरिया बिस्तरा बांध का तुर्की चला गया। फारूक उसका इंटरव्यू लेने गया है।
इसका मतलब यह है कि 2-3 इदारों से पैसा बनाकर उनके लिए किताब लिखने चला है।
मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उस आदमी ने कहा है कि उसने अपनी गाड़ी बेच दी है और पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है।
अब इसे कैसे ढूंढ सकते हैं? टेलीफोन, एड्रेस?
उसके पास उसका कोई नंबर नहीं था। लेकिन एक और आदमी है जो फारूक के किताबों की टाइप सेटिंग करता है, उसका नाम पैमान है। वो शायद कुछ जानता होगा। उसके मोबाइल पर मैसेज छोड़ा है, अगर रात तक फोन नहीं आए तो दोबारा फोन करूंगा।
ठीक है,
अगर तुम चाहो तो तुम्हें थोड़ा खेलना सिखाऊं।
कोई जरूरत नहीं, जाओ तुम अपना खेल खेलो, मैं भी जा रहा हूं अपना खेल खेलने।
पहले अपनी आइसक्रीम खा लो, पिघल रही है।
आओ मसूद भाई,
आप जारी रखें।
अब्बास कहता था कि इंसान को फवारे की तरह नहीं होना चाहिए, उरूज पर पहुंचते ही नीचे नहीं आना चाहिए। शायद तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था।
परवाज इंसान की हकीकत को उजागर कर देती है। तुम जितना ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाते जाओगे, दुनिया तुम्हारी नजर में बड़ी होती जाएगी और तुम दुनिया की नजर में छोटे।
सलाम परवाज, कैसी थी?